अगला चैप्टर है तौहीद फिल इबादा। तौहीद फिल जात क्या थी? जाती तौर पे अल्लाह के साथ किसी को बेटा, बीवी, उसका कुछ भी समझना, ये चीज़ जो है इतनी कॉमन नहीं है बीबी, जितनी अगली चीज़ है जिसको अब हम देख रहे हैं। तो इसमें मसला नंबर 34 है, इबादत की तमाम किस्में, जुबानी, माली और जिस्मानी, सिर्फ अल्लाह ही के लिए मखसूस हैं। यानी इंसान जुबान से अगर इबादत की गरज से कोई बात कहे तो अल्लाह के सिवा किसी और के लिए नहीं कर सकता। माल अपना खर्च करे तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कर सकता है, और अपने जिस्म को अगर थकाएगा तो वो भी अल्लाह के लिए। इसको पढ़ते हैं और इंशाल्लाह फिर इसमें थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। इस बात की दलील सूरत अल-अनाम की आयत 162 से 163, 162 से 163 है। قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ। कह दीजिए मेरी नमाज और मेरे तमाम मरासम अबूदियत और मेरा जीना और मेरा मरना सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसका कोई शरीक नहीं। इसी बात का मुझे हुक्म दिया गया और सबसे पहले सरे एताज झुकाने वाला मैं हूँ। इसमें क्या पता चलता है कि इंसान नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह के लिए पढ़ेगा। हमारे यहाँ एक मारूफ बात बन चुकी है, शौहर को सजदे वाली बात, और उसको फिर मजाजी खुदा कहते हैं। तो मजाजी तो कभी नहीं होता, खुदा एक ही है, वो हकीकी है। वो तो आपने एक मिसाल दी थी कि अगर होता, यानी आपने उस हुक्म के ना होने की शिद्दत बयान की थी तो उससे हमने मजाज का लफ्ज़ बोल दिया। लेकिन अब देखिए कि अगर कोई इंसान कोई ऐसा काम करता है, मसलन किसी के आगे रुकू करता है, इबादत की गरज से खड़ा हो जाता है, सोचिए ज़रा, कोई ऐसा फंक्शन, कोई ऐसी रस्म आज के दौर में मुसलमानों में मौजूद है कि लोग एक ख़ास वक्त बैठ के कुछ पढ़ने पढ़ाने के बाद खड़े हो जाते हैं और फिर ज़ुबान से कुछ ख़ास कलिमात पढ़ते हैं। फितरतन वैसे खड़ा होना गलत नहीं है, आप दिन में कई बार खड़े होते हैं, आपके घर में मेहमान आता है आप उसके वेलकम के लिए खड़े हो जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन इबादत के गरज से खड़े हों कि अब फलां आ गए हैं, अब अल्लाह के नबी आ गए हैं और हम खड़े हो के अब उनको बुलाते हैं और दुरूद पढ़ते हैं, तो ये फिर इसमें अबूदियत में आ जाता है, यानी ये चीज़ शिर्क बनती है। इसी तरह किसी कब्र पर जाके सजदा देना, ये तो सरासर शिर्क है ना। रुकू करना, किसी से एक दुआ मांगना, दुआ भी तो इबादत है ना। अद्दुआ हुआ मुखल इबादा या दुआ हुल इबादा, एक हदीस में लफ्ज़ आते हैं। तो पता क्या चला कि इंसान कोई काम जो अल्लाह के लिए करता है ना, वो किसी और के लिए नहीं कर सकता। अगर उसने इबादत की गरज से किया तो शिर्क किया। इसकी एक दलील सही मुस्लिम की रिवायत है अब्दुल्ला बिन अब्बास से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कुरान मजीद की किसी सूरत की तरह तशहुद सिखाया करते थे, और आपने फरमाया क्या, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन्नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसका तर्जमा देखिए, हम दिन में कम अज़ कम दूसरी, तीसरी और चौथी रकत में पढ़ते हैं ना, इसका तर्जमा क्या है? और बाज़ लोग तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है सही पढ़ते भी नहीं, अत्तहियातु लिल्लाह, अत्तहियात कोई लफ्ज़ नहीं है, अत्तहियात तोहफा, तहिया की जमा ये, मेरे सारे तोहफे। इसका तर्जमा क्या है? मेरी तमाम ज़ुबानी बाबरकत इबादत और तमाम बदनी और माली इबादतें भी अल्लाह के लिए मखसूस हैं। यानी मेरा माल लगेगा तो अल्लाह के रास्ते में लगेगा, मेरा जिस्म थकेगा तो अल्लाह के रास्ते में थकेगा, और मेरी ज़ुबान पे तारीफ़ के और हम्द के तस्बीह के कलमात होंगे तो अल्लाह के लिए होंगे। ए नबी, आप पर सलामती हो और अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें नाजिल हों, सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। मैं गवाही देती हूँ या देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि बंदे का हर जज्बा अल्लाह के लिए होना चाहिए। अब जब ये लफ्ज़ पढ़ेंगे नमाज में तो इसको फील करेंगे कि अत्तहियातु लिल्लाहि, मेरे सारे तोहफे मेरे रब के लिए हैं, किसी के लिए नहीं, किसी जिंदा के लिए, किसी मुर्दा के लिए ऐसी कोई कैफियत नहीं रखी जा सकती। फिर मसला नंबर 35, 35 है, नमाज की तरह का क्याम या बेहिसो हरकत बाअदब हाथ बांधकर खड़े होना अल्लाह ही के लिए मखसूस है। इसकी दलील सूरत बकरा की आयत 238, हाफिजू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वकूमू लिल्लाही कानितीन, अपनी नमाजों की हिफाजत करो और ख़ास तौर पर असर की नमाज की, और अल्लाह के सामने इस तरह अदब से खड़े हो जाओ जैसे फरमाबरदार गुलाम खड़े होते हैं। दूसरी रवायत हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हो से तिर्मिज़ी में है, कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना है, जो शख्स ये पसंद करे कि लोग इसके सामने तस्वीर की तरह बेहिसो हरकत और बाअदब खड़े रहें, वो अपनी जगह जहन्नुम में बना ले। आपने सुनी कभी ऐसी बातें? फलां गए किसी दरगाह में, फिर पीर साहब वहाँ मौजूद थे, फिर उनके सामने बिल्कुल अदब से खड़े हो गए, वो बैठ गए। पहले दौर में बादशाहों के सामने बड़े अदब से दरबारी खड़े रहते थे। ये सब चीज़ें जायज़ नहीं। इसी तरह आज के दौर में मसलन उस्ताद के आने पे बच्चों को खड़ा कर दिया जाता है अदब के लिए या रिस्पेक्ट के लिए, दुरुस्त नहीं है। हमें खुद पता होगा तो हम दूसरों के लिए भी आवाज़ उठाएंगे। हाँ, आम लिटरली खड़ा होना और बात है, लेकिन जब रिस्पेक्ट देने के लिए आप किसी के लिए खड़े होते हैं तो फिर ये चीज़ जो है इसके अंदर आ जाती है। फिर अगला मसला नंबर 36, 36, रुकू और सजदा सिर्फ अल्लाह ही के लिए मखसूस है। इसकी दलील है सूरत हज की आयत नंबर 22, या अय्युहल्लज़ीना आमनुर्कउ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफअलुल खैरा लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, रुकू करो, सजदा करो और इबादत करो अपने रब की, और नेक काम करो ताकि तुम फलाह पा सको। इसमें आप देखिए कि अलग अलग नाम लिए गए कि रुकू, सजदा, ये सब कुछ सिर्फ अल्लाह के लिए होगा। और इसी की फिर दलील अबू दाऊद की एक रिवायत हज़रत कैस रज़ी अल्लाह अन्हो से, कहते हैं कि मैं हीरा, हीरा एक शहर है यमन का, कहते हैं कि मैं हीरा आया तो वहाँ के लोगों को अपने हाकिम के आगे सजदा करते देखा। आपको तो पहले दौर में बादशाहों के सामने भी सजदा करते दिखाया जाता है, ख़ास तौर पे अगर आपने कभी कोई तारीखी ड्रामा देखा हो या नावल पढ़ा हो, कोई फिल्म देखी हो, तो उसमें ये मंज़र आता है। कहते हैं मैंने ख्याल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हाकिमों के मुकाबले में सजदे के ज़्यादा हकदार हैं, कि यानी जब ये अपने बादशाह को सजदा कर सकते हैं तो हम अल्लाह के नबी को क्यों ना करें। चुनाचे जब मैं अल्लाह के नबी की खिदमत अकदस में हाजिर हुआ तो अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैंने हीरा के लोगों को अपने हाकिम के सामने सजदा करते देखा है, हालांकि आप सजदे के ज़्यादा हकदार हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अच्छा बताओ, अगर तुम्हारा गुजर मेरी कब्र पर हो तो क्या तुम मेरी कब्र पर सजदा करोगे? मैंने अर्ज़ किया, नहीं। देखिए सहाबा किराम का अकीदा कितना वाज़े था कि अल्लाह के नबी नहीं करेंगे, तो नबी अकरम ने फरमाया, फिर अब भी मुझे सजदा न करो। अगर मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें, इस हक के बदले में जो अल्लाह ताला ने मर्दों के लिए मुकर्रर किया है। तो क्या पता चला कि जिंदा इंसान के लिए या मरने के बाद किसकी कब्र पे जाके सजदा करना, ये सरासर शिर्क है। और मैं हैरान होती हूँ कि जब ये नज़रिया मस्जिदों से उठाया जाए, जब इस अकीदे को प्रमोट किया जाए दीन के नाम पे, तो फिर वो शिर्क की क्या तफसीरें करते होंगे, अल्लाह ही बेहतर जाने। हमेशा अल्लाह से दुआ करके बैठा करें कि अल्लाह दीन के नाम पे ना बहकाना। दुनिया में तो हम गुमराह थे, रास्ते खोए हुए थे, ऐसा ना कि अब हम दीन पे आए तो गलत दीन पे आ जाएं। और ज़रूर इख्तमाम किया करें इस बात का, कभी कहीं दीन के नाम पे जाएं तो ज़रूर चेक करें कि क्या वाकई ये बात सही है भी कि नहीं, और अगर उसको तावीलात के ज़रिए से पेश कर भी दिया जाए तो एक दफ़ा अल्लाह के कलाम से जब बंदे का दिल जुड़ता है ना, तो उसको अल्लाह ताला पे खुद ही बता देता है कि क्या शिर्क है और क्या नहीं। अल्लाह ताला हम सबको दीन की गुमराहियों से बचा के रखे। मसला नंबर 37, तवाफ यानी सवाब की नीयत से किसी जगह के गिर चक्कर लगाना, और एतिकाफ यानी किसी जगह सवाब की नीयत से बैठना सिर्फ अल्लाह ही के लिए मखसूस है। ये बात क्यों कही गई? तवाफ तो खाना काबा का किया जाता है, क्या आपने कभी देखा लोग किसी और जगह का भी तवाफ करते हैं? बिल्कुल करते हैं। नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि लोगों की मोहब्बतें होती हैं ना इन जगहों से, लेकिन साल में एक दिन जब दरवाजे भी खुलते हैं और लोग उन बुजुर्गों की कब्रों के इर्द गिर्द चक्कर लगा के उस दरवाजे से गुजरते हैं, ये क्या है? अल्लाह के लिए तवाफ होता है। इसी तरह आप देखिए कि किसी जगह इतिकाफ की नीयत से बैठना, जैसे रमजान में बैठते हैं, इसी तरह बाज लोग बाज कब्रों पे मजावर बन के बैठे रहते हैं, कब्रें बनती हैं और उधर लोगों का यानी डेरा होता है। तो ये दोनों चीजें इबादत हैं, और अगर किसी ने की तो उसने तौहीद फिल इबादा के अंदर रखना डाल दिया, वो शिर्क में मुबतला हो गया। इसकी दलील भी नोट कीजिए, सूरत बकरा की आयत 125 है। वअहदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिय लित्तौइफीन लित्तौइफीन वल आकिफीन वर रुक इस्सुजूद। और हमने इब्राहीम और इस्माईल अलैहिम सलाम को ताकीद की थी कि मेरे इस घर को तवाफ, एतिकाफ, रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखो। ये चारों लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल हुए तो गोया कि ये इबादत का हिस्सा है। इसी की दलील चंदा हदीस में, पहली रिवायत है अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हो से सही मुस्लिम में, आपने फरमाया किसी कब्र पर बैठने से बेहतर है कि आदमी आग के अंगारे पर बैठ जाए जो इसके कपड़े और खाल को जला डाले। क्या ज़रूरत है इस रिवायत को आम करने की? हमने अल्लाह के नाम पे ज़मीन का एक टुकड़ा हासिल किया था, लेकिन नेस सदी से जायद हो गई, अभी तक हम उसको पाक नहीं कर सके। आपको पता चल रहा है कि क्यों ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े अभी तक आज़ाद नहीं हो रहे? 50 साल से ऊपर हो गया, हम कश्मीर के नाम पे छोटा सा टुकड़ा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, नाम तो है, क्यों आज़ाद नहीं हो रहा? सोचिएगा, अल्लाह के नबी के दौर में तो 1 माह से ज़्यादा जंग लगती नहीं थी, या हार या जीत। आज इतना वक्त गुजर गया क्यों? क्योंकि वहाँ भी सिर्फ तौहीद नहीं रही, वहाँ भी कब्रें और मज़ारों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है मस्जिदों से। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों से इंसान अपने आप को चेक कर सकता है। फिर उसके बाद दूसरी रिवायत है सही बुखारी और मुस्लिम में, हज़रत अबू हुरैरा उसके रावी हैं, आपने फरमाया क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कबीला दौस की औरतों की पीठें ज़िल खलसा के गिर्द तवाफ़ न करने लगें। ये ज़िल खलसा यामे जाहिलियत में कबीला दौस का बुत था और मुशरिक इसके गिर्द तवाफ़ करते थे। आज भी बाज़ ऐसी जगह हैं कि लोग लिटरली कब्रों का तवाफ़ करते हैं, उनके मज़ारों के गिर्द तवाफ़ करते हैं, तो ये चीज़ इसमें आती है। मसला नंबर 38, 38, नज़र, न्याज, मन्नत और चढ़ावा सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए होना चाहिए। इसकी दलील सूरत बकरा की आयत 173, इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। बेशक अल्लाह ताला ने तुम पर मुर्दार, खून, खिंजीर का गोश्त और वो चीज़ जो अल्लाह के अलावा किसी दूसरे के नाम कर दी जाए उसको हराम कर दिया। और इसकी दलील मुसनद अहमद की रिवायत है तारक बिन शहाब से, कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया एक आदमी सिर्फ मक्खी की वजह से जन्नत में चला गया और दूसरा जहन्नम में। बहुत तवज्जो से सुनने वाली रिवायत है, और वाकई इससे आपको बहुत इंशाल्लाह आसानी से बात समझ में आ जाएगी कि बाज़ दफ़ा लोग बड़े बड़े शिरकिया काम करने के बावजूद भी ये कहते हैं कि हमने कौन सा शिर्क किया है। तो ये वाक़या सुनाती हूँ आपको, हदीस में आपने जो बयान किया, आपने फरमाया दो आदमी एक कबीले के पास से गुजरे, इस कबीले का एक बुत था जिस पर चढ़ावा चढ़ाए बगैर कोई आदमी वहाँ से गुजर नहीं सकता था। चुनाचे उनमें से एक शख्स से कहा गया कि इस बुत पर चढ़ावा चढ़ाओ, यानी एक जगह थी वहाँ बुत था, जो गुजरता कहते इसके नाम पे कुछ चढ़ाओ, कुछ भी दो, इसको थोड़ा दो या ज़्यादा दो। दो आदमी गुजरे, उन्होंने उससे भी यही कहा। एक शख्स से कहा गया कि इस बुत पर चढ़ावा चढ़ाओ, उसने कहा मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं। कबीले के लोगों ने कहा तुम्हें चढ़ावा ज़रूर चढ़ाना होगा, ख्वाह मक्खी ही पकड़ कर चढ़ा दो, यानी एक अना का मसला और एक ये कि हमारे इस बुत के नाम पे दो मक्खी ही दे दो। उसने मक्खी पकड़ी और बुत की नज़र कर दी, जान छुड़ाई के चलो लो पकड़ो ये मक्खी है तो ये पकड़ो, मैं बुत के नाम पे डालता हूँ, और वहाँ से गुजर गया। लोगों ने उसे जाने दिया और वो जहन्नुम में दाखिल हो गया। कबीले के लोगों ने दूसरे आदमी से कहा तुम भी कोई चीज़ बुत की नज़र करो, इसने कहा मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल के अलावा किसी दूसरे के नाम का चढ़ावा नहीं चढ़ाऊंगा। लोगों ने इसे कत्ल कर दिया और वो जन्नत में चला गया। यानी मक्खी भी तो रब की पैदा की हुई है, मैं वो क्यों दूँ? आज मैंने लोगों को अपनी आंखों से देखा है कि बसों और गाड़ियों में बैठे होते हैं, पास ही कब्र के पास है, जब कोई या छोटी सी दरगाह बनी होती है तो बस गुजरती है तो हाथ कुछ कॉइन्स को 1 रुपए में डाल के तो वहां से फेंकते हैं कि ये उस कब्र के ऊपर चला जाए, चढ़ावे, कब्रों पे चढ़ावे, चादरें चढ़ती, फूलों की चादरें चढ़ती, ये सब क्या है? हमारे तो दीन के नाम पे, हमारे तो मजहब क्या, हमारी तो हुकूमत की सरकर्दगी में ये सब कुछ होता है? अल्लाह के नबी ने मरने वालों की कब्रों पे कभी फूल नहीं चढ़ाए। आज हम हर खास मौके पे अपने रहनुमाओं की कब्रों पे फूल चढ़ाते हैं, ना किसी के माथे पे कोई उसके वजह से तेवरी आती है ना फिक्र, क्योंकि हमें पता ही नहीं, हम तो बस जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, रंग रौनक का नाम लगता है, चल पड़ते हैं। हम बड़े शौक से जाते हैं, हम फला मज़ार देखने जा रहे हैं, हम अपने शहरों में जब जाते हैं, अपने मुल्कों में लोगों को पब्लिक प्लेस पे या जैसे एक फ़न के लिए लेके जाते हैं, फला मज़ार पे चलो, नाम लेने की ज़रूरत नहीं। कभी सोचा आपने कि क्या ये भी सही है कि नहीं? अल्लाह के नबी की तो कब्र अलग नहीं, अलग से तो कब्रें बनाना, एक कब्र बनाना तो इस्लाम में है ही नहीं, क्योंकि उसी से शिर्क फैलता है। इंशाल्लाह आगे कहीं ना कहीं इस पे बात होगी। अगला मसला देख लेते हैं, 39 नंबर, कुर्बानी सिर्फ अल्लाह ही के नाम की देनी चाहिए। इसकी दलील है सूरत अनाम की आयत 121 यानी 121। वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहु अलैहि व इन्नहु लफिस्क وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَتَاتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ। और जिस जानवर को अल्लाह के नाम पर ज़िबह न किया गया हो, इसका गोश्त न खाओ, ऐसा करना फिस्क है। शयातीन अपने साथियों के दिलों में शकूक व शुभात डालते हैं ताकि शयातीन के साथी शिर्क के लिए तुमसे झगड़ा करें, लेकिन अगर तुमने इनकी इताअत कबूल कर ली तो तुम भी मुशरिक हो गए। और एक हदीस सही मुस्लिम में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो से, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है उस शख्स पर जो गैर अल्लाह के नाम पर जानवर ज़िबह करे, जो ज़मीन की हदें तब्दील करे, जो अपने वालिद पर लानत करे और जो बिदती को पनाह दे। तो इन सारी बातों से पता चला कि कोई एक्शन जो अल्लाह के सिवा किसी दूसरे के लिए किया जाए कुर्बानी की सूरत में हो तो वो भी शिर्क है। मुझे किसी खातून की बात याद आ जाती है, कहती है हमारे ख़ानदान में तो ईद कुर्बान पे भी बकरा जो कटता है तब तक उस गोश्त को खाते नहीं जब तक फुला अपने पीर साहब की कब्र पे जाके उसको चक्कर न लगवाएं। यानी बकरों के बाज़ लोग उस गोश्त का कुछ हिस्सा बना के पहले भेजते हैं अपने कब्र पे ख़त्म दिला के, फिर उस गोश्त को बांटते हैं। सच्ची बात है, मेरा तो दिल इतना दुखता है, मैं कहती हूँ अगर हम बाकी सारे सब्जेक्ट ड्रॉप करके ना सिर्फ इस मौजू की तफसील से इस पूरे कोर्स में देख लेना तो हक है कि किया जाए, क्योंकि इतना शिर्क फैला हुआ है। और हम मुसलमानों में हम नाम लेते हैं कि हम मुसलमान मुल्क के लोग हैं या हम इस्लामिक कंट्रीज हैं, लेकिन इस्लाम नहीं है, इल्म नहीं है ना। हमें बहुत सारी बारीक बातें अब पता चल रही हैं जब हम इसको गहराई से पढ़ रहे हैं, तो कई बेचारों ने तो ये पढ़ा ही नहीं। लोग सरीहन शिर्क करते हैं और कहते हैं मैंने क्या किया। तो बहरहाल इंशाल्लाह जब तफसील से कुरान पाक आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें दिखेंगी कि इतनी बारीक चीज़ें हैं शिर्क की, कि आपने फरमाया कि शिर्क इस तरह बारीक है कि जैसे अंधेरी रात में स्याह पहाड़ पर काली चींटी चलती भी नहीं दिखती ना, इस तरह शिर्क भी बंदे को नहीं दिखता। आपने फरमाया कि मुझे अपनी उम्मत पर शिर्क के असगर का डर है। अगले इंशाल्लाह चैप्टर जो कल करेंगे हम उसमें ये टॉपिक आएगा तो इंशाल्लाह हम फिर इस पर कंक्लूड करेंगे। अभी चलते हैं अगले मसले पे, मसला नंबर 40। दुआ सिर्फ अल्लाह ताला ही से बराह रास्त मांगनी चाहिए। इसकी दलील सूरत बकरा आयत 186। व इसा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीब दावत दाई सादान फल यस्तजीबू ली वल युमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। ए नबी, मेरे बंदे जब तुमसे मेरे मुतल्लिक पूछें तो इनको बता दो कि मैं तुमसे करीब हूँ, जब कोई दुआ करने वाला मुझसे दुआ करता है तो मैं कबूल करता हूँ, बस इन्हें चाहिए कि वो मेरा हुक्म माने, मुझ पर ईमान लाएं ताकि राह रास्त पा लें। इसकी दलील एक हदीस से तिर्मिज़ी की रिवायत है, नोमान बिन बशीर से कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से ये बात सुनी कि दुआ इबादत है। ये जो बात है ना कि हम कहते हैं दुआ करने से क्या होता है, नहीं दुआ इबादत है, तो इबादत तो अल्लाह के सिवा किसी और की नहीं है, तो फिर दुआ हम किसी और से कैसे कर सकते हैं। फिर आपने यह आयत तिलावत फरमाई कि तुम्हारा रब कहता है कि मुझसे मांगो और मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा, जो लोग मेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं मैं इन्हें जल्द ही रुसवा करके जहन्नुम में दाखिल करूंगा। मसला नंबर 41। 41। पनाह सिर्फ अल्लाह ताला ही से मांगनी चाहिए। इसकी दलील, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिन अल जिन्नति वन नास। कह दीजिए कि मैं पनाह मांगता हूँ इंसानों के रब, इंसानों के बादशाह, इंसानों के हकीकी माबूद की, इस वसवसा डालने वाले के शर से जो बार बार पलट कर आता है, जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है, ख्वाब वो जिन्नों में से हो या इंसानों में से। और हदीस, अब देख रहे हैं कि हर मसले की तस्दीक में कुरान पाक की एक आयत और एक हदीस बयान की जा रही है। हालांकि अगर आप कुरान पाक को खोलें और तरतीब से ज़रा आयतों को अलग करें, सिर्फ़ एक एक मसले पे आपको 20 आयतें मिलेंगी, बाज़ मसलों पे आपको 50-50 आयतें भी मिलेंगी। और जब मैंने कुरान पाक को इस फॉर्म में करके देखा, मुझे लगा कि कुरान पाक का 2/3 से ज़्यादा हिस्सा हमें तौहीद सिखाने आया है, जिस पे हम इतनी बात नहीं करते। हम दीन भी शुरू करेंगे ना तो पर्दे से शुरू करेंगे, हम दीन भी शुरू करेंगे ना तो हम खाने पीने की किसी आदत से शुरू करेंगे, हम रफुल यदैन से दीन शुरू करते हैं, हम ऊंची नमाज और नीची नमाज से दीन शुरू करते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि दीन तौहीद से शुरू होता है। अल्लाह ताला हमारी तौहीद को पुख्ता कर दे। तो हदीस क्या है, खौला बिनते हकीम से कहती है कि मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना, जो शख्स किसी जगह ठहरे और ये दुआ पढ़े, क्या, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहित्तामाति मिन शर्री मा खलक, मैं अल्लाह के मुकम्मल कलेमात के ज़रिए सारी मखलूकात के शर से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, तो उसे उस जगह से रवाना होने तक कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचाएगी। सही मुस्लिम की ये रिवायत है। सफ़र में जब होते हैं, कहीं रुकते हैं, गाड़ी पे उतरे, जैसे आप यहाँ से कहीं लॉन्ग ड्राइव के लिए जाते हैं, अब रास्ते में आप पिकनिक एरिया में उतरते हैं, थोड़ी देर स्टॉप कर लें, लेकिन कोई पता नहीं वहाँ से कोई सांप निकल आए, जंगल है, कोई बिच्छू निकल आए, तो ये दुआ पढ़ लिया करें, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहित्तामाति मिन शर्री मा खलक, तो फरमाया कि फिर कोई चीज़ इंसान को तकलीफ़ नहीं देगी। तो इसमें हमने देखा कि हमने अल्लाह के नाम से पनाह पकड़ी, कि अल्लाह की पनाह में बाकी चीज़ों को दिया। फिर अगली बात, मसला नंबर 42, तवक्कुल और भरोसा सिर्फ अल्लाह ही पर करना चाहिए, यानी किसी दूसरे पे तवक्कुल करना भी जो है ना, ये भी शिर्क हो जाता है। इसकी दलील, सूरत आल इमरान की आयत 160, इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिबलकुम वा इन यखज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरकुम मिन बादिही वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद पर हो तो कोई ताकत तुम पर गालिब आने वाली नहीं, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो इसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करे। बस सच्चे मोमिनों को अल्लाह ही पर तवक्कुल करना चाहिए। और इसकी दलील में हदीस, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, अगर तुम लोग अल्लाह पर तवक्कुल करो जैसा तवक्कुल करने का हक है, तो वो तुम्हें इसी तरह रिस्क दे जैसे परिंदों को रिस्क देता है। परिंदे सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भर कर वापस आते हैं, इब्ने माजा की रिवायत है। हालांकि परिंदों की कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई स्टोर नहीं है उनका, उनकी कोई जॉब नहीं, लेकिन खाली पेट निकलते हैं, खुद भी खाते हैं और बच्चों के लिए चोंच में दाना लेके आते हैं। आज हमारा तवक्कुल किस पे है? हाय, जॉब चली गई, इकोनॉमी ड्रॉप हो गई, यानी ये छोटे छोटे शिर्क हैं। आप अगर रिलाई करते हैं ना किसी चीज़ पे, तो वो भी आपके तवक्कुल के ख़िलाफ़ है। किसी इंसान पे तवक्कुल करते हैं, नहीं देखना ये मेरी मदद करेगा, शौहर चला गया दुनिया से, हाय अब बच्चे कहाँ से खाएंगे, नहीं। देखिए ये झूठे सहारे हैं, ये छोटी छोटी मोहरे हैं जो अल्लाह ने दुनिया में रख दी, असल ज़ात उसकी है। लिहाजा अपने ईमान को पुख्ता करने की ज़रूरत है कि मेरा रब जो कर सकता है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। मसला नंबर 43, रज़ा और खुशनूदी सिर्फ अल्लाह ही की तलब करनी चाहिए। इसकी दलील, आयत नंबर 38 सूरत रोम, फ़ाति ज़ल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन वबन सबील ज़ालिका खैरु लिल्लज़ीन युरीदून वजह अल्लाह वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। रिश्तेदार, मिस्कीन और मुसाफिर को इसका हक अदा करो, यही तर्ज अमल बेहतर है इन लोगों के लिए जो अल्लाह की खुशनूदी चाहते हैं, और वही लोग फलाह पाने वाले हैं। और हदीस है हज़रत माविया से, हज़रत माविया हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत करते हैं, और ये तिर्मिज़ी की ये रिवायत है, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स लोगों की नाराज़गी मोल लेकर अल्लाह की रज़ा तलब करता है तो अल्लाह ताला इसे लोगों से गनी कर देता है। यानी अल्लाह को राज़ी करना है, लोग नाराज़ होते हैं तो हो जाए। और जो शख्स अल्लाह की रज़ा जो ही हासिल करने के लिए अल्लाह ताला की नाराज़गी मोल लेता है तो अल्लाह ताला उसे लोगों के सुपुर्द कर देता है। हम तो नहीं ऐसे, हाय लोग क्या कहेंगे। जिस बंदे ने ये खौफ खा लिया ना कि लोग बातें करेंगे, लोगों की बातों के डर से फलां काम कर लो, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं इसको लोगों के जिम्मे डाल दूंगा। अब वो डरता ही रहेगा बेचारा। इसीलिए देखिए ऐसी तबीयत के हामिल लोग अक्सर जहनी मरीज बन जाते हैं, वो डरते और खौफ खाते रहते हैं। लेकिन जो अल्लाह से डरता है, भाई मैंने रब को नाराज़ नहीं करना, तो अल्लाह ताला उससे फिर राज़ी भी होता है। फिर आप देखिए कितनी बारीकी है ना तौहीद में। अगला मसला पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, मसला नंबर 44, 44, तमाम मोहब्बतों पर गालिब अल्लाह ही की मोहब्बत होनी चाहिए। यानी ये भी शिर्क हो जाएगा कि हम अल्लाह से ज़्यादा किसी और से मोहब्बत करें। दलील क्या है, सूरत बकरा आयत 165, वमिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को इसका हमसर और मद्दे मुकाबिल बनाते हैं और इनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह ताला से करनी चाहिए, हालांकि ईमान वाले तो अल्लाह ताला से टूट कर मोहब्बत करते हैं। और हदीस बड़ी खूबसूरत है इस मफहूम की तस्दीक में, सही मुस्लिम की रिवायत है हज़रत अनस से, आपने फरमाया जिस शख्स में ये तीन खसलतें होंगी वो इनकी वजह से ईमान की हकीकी हलावत और मिठास महसूस करेगा। आपको आती है ईमान की मिठास? ईमान बड़ी मीठी चीज़ है, ये इंसान के टेस्ट को मीठा कर देता है। और ये वो चीज़ है कि जो इंसान को दुनिया के गमों में भी गम नहीं आने देती और मुश्किलों में मुश्किल में नहीं आने देती। तीन चीज़ें हैं जिसने अपने अंदर पैदा कर ली उसको ईमान की मिठास मिल जाएगी, अल्लाह ताला हमें अता फरमा दे। वो कौन सी चीज़ है? पहली चीज़ अल्लाह और उसके रसूल से बाकी तमाम लोगों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा मोहब्बत हो। ये कैसे होती है, कैसे पता चले? बस देख लीजिए, एक तरफ अल्लाह का हुक्म आ रहा है और दूसरी तरफ हमारे घर वालों का कोई हुक्म है, एक तरफ अल्लाह का हुक्म है दूसरी तरफ बच्चों का कोई मुतालबा है, शौहर की बात है, मैं किसकी मानती हूँ। ज़िंदगी में कई मुकामात ऐसे आते हैं कि हम इस दोराहे पे खड़े होते हैं, एक दफ़ा घर में से किसी को खुश करना है और दूसरी तरफ अल्लाह को खुश करना है, हम किसको खुश करते हैं? मुझे तो लगता है अमूमन अल्लाह ताला को पीछे डाल देते हैं, इनको खुश कर लो अल्लाह की खैर है वो तो कर लेगा। हो नहीं, ईमान का तकाजा क्या है कि अल्लाह और उसका रसूल सबसे ज़्यादा हम उसको राज़ी रखें। दूसरी क्या है, किसी आदमी से अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करना, इन्नी उहिब्बु की फिल्ला, अल्लाह के लिए मोहब्बत करना, ये भी बंदे को ईमान देता है। और तीसरी चीज़ ये है कि कुफर जिससे अल्लाह ने उसे बचाया है उसकी तरफ पलटना उसे इतना ही नापसंद हो जितना आग में दाखिल होना। यानी इंसान एक बुरी आदत छोड़ दे शऊर के साथ फिर दोबारा उसी में लग जाना। हम सोचे ज़रा, कभी ऐसा हुआ कि हमने जोश में आके कोई नेकी शुरू की फिर थोड़े दिन बाद होश आया तो छोड़ दी? कहा कि ईमान वाले को तो ये बात इतनी बुरी लगती है कि जैसे कोई उसको आग में डाल दे। आग में डलना उसको पसंद है लेकिन एक नेकी को शुरू करके छोड़ना उसको पसंदीदा नहीं होता। तो अल्लाह ताला हमें इन तीनों चीज़ों का हामिल कर दे। फिर आप देखिए कि एक और किस्म जो शिर्क की बनती है वो कहर डर। अगला मसला है 45, हर किस्म के डर और खौफ पर अल्लाह ही का खौफ और डर गालिब होना चाहिए। दलील है सूरत तौबा की आयत 13-13, अल्लाह ताला फरमाते हैं अतख्शौनहुम फल्लाहु अहक्कु अन तख्शौहु इन कुंतुम मुमिनीन, क्या तुम काफिरों से डरते हो हालांकि अल्लाह ताला इसका ज्यादा हकदार है कि तुम उससे डरो अगर तुम वाकई मोमिन हो। डर है हमारे दिल में किसी और का? ससुराल का डर तो नहीं है, बच्चों के ससुराल का तो नहीं है? पहले अपने ससुराल से डरते हैं फिर बच्चों के ससुराल से डरते हैं, छोटी छोटी बातों पे डरते हैं और फिर उस डर की वजह से जब गलत काम कर लेते हैं तो सोचिए अल्लाह को कितना गुस्सा आता होगा। मसला नंबर 46, 46, दीन और दुनिया के तमाम मामलात में इताअत सिर्फ अल्लाह ही की करनी चाहिए। यदि दूसरे की इताअत कर लेना भी बंदे को तौहीद के मुकाम से गिरा देता है, इसकी दलील सूरत नहल आयत 36, ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा और उसके ज़रिए सबको खबरदार कर दिया कि अल्लाह ताला की इताअत करो और तागूत की इताअत से बचो। इसके बाद इनमें से किसी को अल्लाह ने हिदायत बख्शी और किसी पर गुमराही साबित हो गई। और हदीस है तिर्मिज़ी में, अदी बिन खातिम इसके रावी हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी की खिदमत में मैं हाज़िर हुआ और मेरी गर्दन में सोने की सलीब थी, क्रॉस, क्योंकि ये पहले क्रिश्चियन थे। कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद किया, ए अदी, इस बुत को उतार कर फेंक दो। यानी स्लीप को अल्लाह के नबी ने बुत कहा। मैंने उस वक्त आपको सूरत बरात की आयत पढ़ते हुए सुना। उन्होंने कहा कि इन अहले किताब ने अपने उलमा और दरवेशों को अल्लाह के सिवा रब बना लिया। तब अदी के सवाल के जवाब में आपने इरशाद फरमाई कि वो अहले किताब अपने उलमा और दरवेशों की ज़ाहरी इबादत नहीं करते थे, यानी सजदा नहीं करते थे अपने उलमा को या रुकू भी नहीं करते थे, बल्कि जब उलमा किसी चीज़ को हलाल करार देते तो ये उसे हलाल जान लेते, और जब उलमा किसी चीज़ को हराम ठहराते तो वो भी इसको हराम जान लेते। और यही मतलब है उलमा को अल्लाह के सिवा रब बनाने का। आज हमारे दौर में तो नहीं है सौरा बुज़ुर्गों के और उलमा के नाम पे हम कहते हैं कि ये हमारे आलिम साहब ने कह दिया, आप कहते हैं इसकी दलील दिखाओ, कहते हैं दलील कोई नहीं, बस हमारे मुफ्ती साहब ने ये मसला बता दिया। किसी के हराम को हलाल करना ये अल्लाह के सिवा किसी और के इख्तियार में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जमा की तो हमारे सामने 11 पॉइंट्स यानी 11 पॉइंट्स बनते हैं कि जो तौहीद इबादत के बारे में शिरकिया उमूर में शामिल होते हैं हम उसको रिवाइज़ कर लेते हैं, और फिर इन सब को अमली तौर पे देखेंगे ज़िंदगियों में कि कहाँ हम या हमारे साथियों में कोई दोस्तों में ऐसे काम तो नहीं कर रहा। अगर ऐसी कोई चीज़ मिले तो अल्लाह से फ़ौरन तौबा करें, दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी इन चीज़ों से निकाल दे और दूसरों को भी निकाल दे। पहली चीज़, अल्लाह ताला के सिवा किसी जिंदा या फौत शुदा नबी, वली, गौस, कुतुब या अबदाल के सामने बेहिसो हरकत बा अदब हाथ बांध कर खड़े होना शिर्क है। दूसरी बात, अल्लाह के सिवा किसी जिंदा या फौत शुदा नबी, वली, गौस, कुतुब या अबदाल वगैरह के सामने रुकू की तरह झुकना या सजदा करना भी शिर्क है। यानी जैसे क्याम शिर्क है इसी तरह रुकू या सजदा भी शिर्क है। तीसरी बात, किसी मज़ार पर सवाब की नियत से कम या ज़्यादा वक्त के लिए क्याम करना या मुजावर बनकर बैठना या तवाफ़ करना शिर्क है। चौथी बात, अल्लाह ताला के अलावा किसी जिंदा या फौत शुदा नबी, वली, गौस, कुतुब या अबदाल वगैरह से दुआ मांगना या इन्हें दुआओं में वसीला बनाना शिर्क है। पांचवी बात है, मुसीबत या तकलीफ़ में अल्लाह के सिवा किसी जिंदा या फौत शुदा नबी, वली, गौस, कुतुब या अबदाल वगैरह को पुकारना, इनसे फरियाद करना, इनसे पनाह तलब करना शिर्क है। अगर वक्त होता ना तो मैं आपको यहाँ कुछ क्लिप सुनाती जिससे ये तो मुझे लगता कि इस महफिल की शान नहीं कि ऐसे शिरकिया जुमले हों, लेकिन चंद कवालियों के शेर, चंद नातों के शेर कि अल्लाह के नबी को तो पुकारते ही थे, अब उन्होंने बुज़ुर्गों को भी पुकारना शुरू कर दिया और किसी को दस्तगीर और किसी को कुतुब और किसी को कुछ कहा। छठा देखिए, अल्लाह ताला के अलावा किसी जिंदा या फौत शुदा नबी, वली, गौस, कुतुब या अबदाल वगैरह के नाम का जानवर ज़िबा करना या इनके नाम की नजर व न्याज देना या मन्नत मानना या चढ़ावा चढ़ाना शिर्क है। सातवां है, दुनिया या आखरत में नुकसान के डर से अल्लाह के मुकाबले में किसी फौत शुदा नबी, वली, गौस, कुतुब या अबदाल वगैरह से डरना शिर्क है। आठवीं बात है, दुनिया या आखरत की कामयाबी के हसूल के लिए अल्लाह के मुकाबले में किसी फौत शुदा नबी, वली, गौस, कुतुब या अबदाल वगैरह की रज़ा हासिल करना शिर्क है। अगली बात, अल्लाह के मुकाबले में किसी जिंदा या फौत शुदा नबी, वली, गौस, कुतुब या अबदाल वगैरह से बढ़कर मोहब्बत करना शिर्क है। यानी अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत किसी और से। इसी तरह इन सब पर तवक्कुल करना भी शिर्क है। ये नंबर 10 है। और 11 क्या है कि अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा हलाल व हराम के मुकाबले में किसी वली, गौस, कुतुब, अब्दाल या मुर्शद या किसी मजहबी रहनुमा या सियासी लीडर या किसी पार्लियामेंट या किसी असम्बली वगैरह के मुतय्यन करदा हलाल और हराम पर अमल करना शिर्क है। तो ये थी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन तौहीद फिल इबादा की। और कुछ ना समझ आया हो ना, तो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि शिर्क और तौहीद का दायरा कितना वसीع है। हमने तो इसको एक लफ्ज़ से रखा हुआ था ना कि अल्लाह एक है, दैट्स इट, ये है, मुसलमान हो गए, ला इलाहा इल्लल्लाह हो गए मुसलमान। नहीं, उसके तकाजे निभाने मुश्किल है। जैसे पीछे हमने ब्रांचेज ऑफ फेथ देखी थी, ईमान की जो शाखें थी, उसमें भी हमें अंदाज़ा हुआ था कि ईमान सिर्फ एक लिप सर्विस का नाम नहीं। इसी को अल्लामा इकबाल कहते हैं ना कि जुबान ने कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इसलिए हमें फिक्र लगनी है अपनी और अपने अकीदों को चेक करना है, क्योंकि हल्का सा शिर्क हमारी बहुत बड़ी बड़ी नेकियों को खा जाएगा।